नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करेगा और लोग उसकी आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे, ताकि आज के इस अध्ययन के द्वारा हम अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, जो इस समय आपके वचन सुनने के लिए रेडियो के निकट बैठे हैं, आप उन्हें स्पर्श करें, उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए व्यक्तिगत लाभ का कारण हो सके। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, आप उन्हें भी छुएं, उनसे भी बातचीत करें, उनके जीवन में अपनी शांति प्रदान करें। आज के अध्ययन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, परमेश्वर इसराइल की पीड़ा का दोष अपने ऊपर लेकर के कहता है कि भविष्य में एक दिन वह उन्हें स्वदेश में एकत्र करेगा, वह उन्हें एक शक्तिशाली राज्य बनाएगा और स्वयं वहां राज्य करेगा। वे प्रसव पीड़ा के समान कष्ट का अर्थनाद करेंगे, परंतु परमेश्वर कहता है कि यहोवा की कल्पनाएं कोई नहीं जानता। वह सब कष्टकारियों को इसराइल के हाथों हराएगा। यह हर्मगिदोन का युद्ध होगा, जिसमें परमेश्वर उन सब को दंड देगा। इसराइल की सहायता ना तो रूस से, ना मिस्र से, ना अन्य किसी देश से आएगी, परंतु उनका सहायक, उनका युक्ति करने वाला यहोवा परमेश्वर होगा। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज का अध्ययन मीका नबी की पुस्तक उसके 5 अध्याय से आरंभ होगा, जिसका विषय है मसीह के आगमन की भविष्यवाणी। मसीह के आगमन की भविष्यवाणी अध्याय 5 में अध्याय 4 का ही विषय चल रहा है, पूर्व की प्रतिज्ञाओं के कारण भावी महिमा। अध्याय 4 में हमने इसराइल की भावी महिमा की भविष्यवाणी देखी थी और इस अध्याय में हम मसीह के आगमन की भविष्यवाणी देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ मीका नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद को निकाल लीजिए। 5 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इसराइल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे। इब्रानी धर्मशास्त्र में यह पद अध्याय 4 का अंतिम पद है। मैं भी मानता हूं कि यह पद अध्याय 3 ही में होना चाहिए, क्योंकि इसमें अध्याय 4 पद 9 में आरंभ किया गया विचार है। बेबीलोन के आक्रमण का आतंक और महाक्लेश तथा हर्मगिदोन का युद्ध, इस युद्ध में वह पुनः बेबीलोन के आक्रमण का उल्लेख करता है। यहां पर लिखा है कि उसने हम लोगों को घेर लिया है। यह मेरे विचार में बेबीलोन द्वारा यरूशलेम के घेराव का उल्लेख है। तब वह कहता है कि वे इसराइल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे। कुछ विचारकों का मानना है कि इसराइल का यह न्यायी प्रभु यीशु है, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु के गाल पर थप्पड़ मारा था, सोंटा नहीं, और न ही प्रभु यीशु पर घेराव के समय वार किया गया है। उसे अपनों ही ने मारा था, किसी विजेता बैरी ने नहीं। अतः मैं नहीं मानता कि यह प्रभु यीशु के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के संदर्भ में है। मुझे तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह न्यायी दाऊद के वंश का अंतिम राजा सिद्दीकिया है, जिसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। उन्होंने सिद्दीकिया राजा के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिद्दीकिया की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। अतः मेरे विचार में मीका की यह भविष्यवाणी सिद्दीकिया के बारे में है, जो दाऊद के राजसी वंश का अंत था, परंतु सिद्दीकिया उसका सीधा वंशज नहीं था। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि यहोयाकीम राजा ने बेबीलोन के राज के विरुद्ध विद्रोह किया था और परिणाम स्वरूप नबूकदनेस्सर ने उसे बंदी बना लिया था और उसके स्थान पर यहोयाकीन को गद्दी पर बैठाया। इसे हम दूसरा राजा की पुस्तक 24 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, वह यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन ले गया। यह दाऊद का वंश था जिसे बंधुआई में ले जाया गया था और उन्हीं से यूसुफ और मरियम यीशु की माता का जन्म हुआ था। सिद्दीकिया यहोयाकीन का चाचा था जिसे नबूकदनेस्सर ने गद्दी पर बैठाया था। उसके विद्रोह से क्रोधित होकर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में राजा नियुक्त करने की व्यवस्था का ही अंत कर दिया और सिद्दीकिया के पुत्रों को घात करवा दिया, मरवा डाला। अतः यदि आप सोचे कि दाऊद का वंश तो समाप्त हो गया था, तो फिर दाऊद को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा की उसके वंश का एक सदाकालीन राजा आएगा पूरी नहीं हो सकती। अब यह एक असामान्य वाद है जो हमारे विचारों के सर्वथा विपरीत है। आइए हम देखेंगे कि मसीह के जन्म की भविष्यवाणी। मेरे प्रियो, यह पद बड़े दिन की कहानी है। यदि आप इसे बड़े दिन के अवसर पर नहीं पढ़ेंगे तो आपने गलत समय चुना है। यह तो लगभग निश्चित ही है कि प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर के दिन नहीं हुआ था। अति संभव है कि यीशु का जन्म उनकी बसंत ऋतु में हुआ था, क्योंकि दिसंबर महीने में चरवाहे पहाड़ों में भेड़ें नहीं रखते थे। उस समय वे भेड़ों को गुफाओं में रखते थे। सन 532 में एक कैलेंडर तैयार किया गया था जो आज के कैलेंडर के समान ही था। उसमें वर्ष के दिन सही नहीं थे और यही कारण है कि हमारे पास कभी कभी फरवरी में 29 दिन होते हैं। सन 1752 में वह कैलेंडर 11 दिन आगे चला गया था, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जन्मतिथि 11 फरवरी की अपेक्षा 22 फरवरी हो गई थी। अतः वर्ष का समय हमारे लिए महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है वह स्थान। यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। आइए हम पढ़ते हैं मीका नबी की पुस्तक 5:2 में लिखा हुआ है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सिदकिया के साथ जो भी हुआ, वे बेबीलोन के दासत्व में गए और जब लौटे तो राजवंश नहीं किसान थे। उनमें से दाऊद का एक वंशज आने वाला था। लिखा है, हे बैतलहम एप्राता। बैतलहम नाम के दो स्थान थे, एप्राता अर्थात फलवंत, एक यरूशलेम में जोड़कर अंतर दर्शाया गया है। मीका 700 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु के जन्म स्थान का नाम बताता है। इतनी अधिक घटनाओं के घट जाने के बाद संभावना बहुत ही कम थी कि प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में हो। दाऊद के वंश से तो एक भी जन बैतलहम में नहीं रह रहा था, वे सब तितर बितर हो गए थे। नासरत में एक वंशज था, परंतु प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में ही होना था। मेरे मित्रों, मीका ही की भविष्यवाणी के आधार पर शास्त्रियों ने ज्योतिषियों को बैतलहम का नाम सुझाया था। यद्यपि वे इस भविष्यवाणी की पूर्ति पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार उन्होंने राजा के जन्म का स्थान बताया था। बैतलहम में यीशु के जन्म की परिस्थितियों से हम बहुत अधिक परिचित हो चुके हैं, इसलिए हमें उनकी विशेषता का बोध नहीं होता है। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि कैसर अगस्तुस के आदेशानुसार मरियम को अपनी जनगणना करवाने के लिए बैतलहम को जाना पड़ा। वह गधी पर सवार थी। उस उबड़ खाबड़ रास्ते में गधी मरियम को गिरा सकती थी और प्रसव का समय भी निकट था। प्रसव समय की पूर्ति के कारण यीशु का जन्म कहीं और रास्ते में ही हो जाता, परंतु वह गधी ठोकर खा ही नहीं सकती थी, क्योंकि 700 वर्ष पूर्व मीका ने कहा था कि यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। समय परमेश्वर की ओर से निर्धारित था और वह गधी अपने निर्धारित समय पर मरियम को लेकर बैतलहम पहुंची। लिखा है, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। ध्यान दीजिए, मेरे लिए का अर्थ है परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करेगा। तब आगे पढ़ते हैं, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यद्यपि देह धारण करने के बाद वह एक समय इस संसार में आया, परंतु उसका अस्तित्व अनंत है। वह पिता के साथ पहले से ही है। मीका का समकालीन यशाया भी कहता है, यशाया 7:14 में, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इस पुरुष के विषय में यशाया और कुछ भी नहीं कहता है। यशाया 9:6 में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। हमारे लिए से यशाया के कहने का अर्थ था इसराइल के लिए। बालक उत्पन्न हुआ है अर्थात यीशु का देह धारण हुआ है और पुत्र अर्थात अनंत अस्तित्व वाला परमेश्वर। बालक का बैतलहम में जन्म हुआ, परंतु पुत्र अनादि काल से है। भजन संहिता 90 उसके 2 पद में लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। इब्रानी भाषा में इस पद का अर्थ है अतीत के विलोपन बिंदु से भविष्य के विलोपन बिंदु तक तू ही परमेश्वर है। और इस तरीके से कहें कि अल्फा और ओमेगा तू ही है, वह परमेश्वर का अनंतकालीन पुत्र है। नीति वचन 8 के 23 में लिखा है, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूं, ठहराई गई अर्थात अभिषिक्त हूं। अगले 2 पदों में लिखा है, जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई, उस पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। सृष्टि से पूर्व वह परमेश्वर था और निश्चित समय पर वह एक ग्रामीण क्षेत्र में आया, बैतलहम गांव में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 28 पद में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। मेरे मित्रों, उसका आना प्राचीन काल से है, वह अनंत परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 58 पद में लिखा है कि उसने फरीसियों से कहा था कि वह अब्राहम से पूर्व का है, वह पुराने नियम में अनेक बार प्रकट हुआ है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 3 पद में उसके विषय में लिखा है कि उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुआ, वह सृजनहार है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 16 पद में हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय विचरण करते हुए परमेश्वर की वाणी वही था जो प्रभु यीशु है, वह परमेश्वर का वचन था, वह परमेश्वर और मनुष्य का संपर्क माध्यम था। हम उसे संपूर्ण पुराने नियम में मनुष्य की खोज में देखते हैं। जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देने वाला भी वही था। उसने कहा, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। वह मुक्ति दाता था। अतः मीका यहां पर जो कह रहा है वह गंभीर महत्व की बात है। यद्यपि वह मानव रूप में बैतलहम में जन्मा, परंतु उसका निकलना आदि काल से था। मेरे प्रियो, यह तो थी उसकी देह धारण से पूर्व की बात। अब हम उसके देह धारण को देखेंगे। बैतलहम में जन्म लेकर उसे एक नाम मिला, यीशु, जो उसका मानवीय नाम था। वह यहोवा था, परमेश्वर था, परंतु अब वह यीशु उद्धार करता है। आपको स्मरण होगा कि स्वर्ग दूतों ने चरवाहों से कहा था, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परंतु उसका नाम यीशु था। वह इमानुएल हुए बिना यीशु नहीं हो सकता था। उसे हमारे स्थान पर पापों का दंड अर्थात मृत्यु भोगने के लिए यहां पर आना पड़ा। यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य अपने आप में जो एक पापी है और अपने पाप के कारण दूसरे मनुष्य को नहीं बचा सकता, परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है कि इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के आने का समय निश्चित था। 700 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु के बारे में मीका नबी ने कहा कि वह बैतलहम नगर में जन्म लेगा, और कैसे लेगा, एक कुंवारी से जन्म लेगा। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर किसी कार्य को करता है तो अपने योजना के अंतर्गत करता है, और यही कारण है कि प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर आने से पूर्व 700 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार किया और उसके बारे में भविष्यवाणियां दी ताकि हम उस बात को समझ सकें। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया? मानव जाति को उद्धार देने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक मनुष्य जो पापी है दूसरे मनुष्य को नहीं बचा सकता, एक पापी दूसरे पापी को नहीं बचा सकता, एक व्यक्ति जब दलदल में गिर गया है तो वह दूसरे को नहीं बचा सकता क्योंकि वह स्वयं दलदल में है, और यही कारण है कि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य होकर इस पृथ्वी पर यीशु को भेजा ताकि इस पृथ्वी पर मनुष्यों का उद्धार हो, छुटकारा हो। और यही कारण है कि जब यहां पर हम पढ़ते हैं कि इम्मानुएल, अर्थात आगे हम देखते हैं कि हमारा उद्धार करता, उसे हमारे स्थान पर हमारे पापों के कारण हमारे पापों का दंड भोगना था, और इसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए और इसी के द्वारा उसने अपने आप को बलिदान किया और हमारे लिए मुक्ति का मार्ग तैयार कर दिया ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, वह मरा, गाड़ा गया और सिर्फ वो कब्र में पड़ा नहीं रहा परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर था, आज भी वह जीवित है और जो कोई उसके निकट आते हैं वे उद्धार पाते हैं। मेरे मित्रों, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में मसीह के आने की अनेक भविष्यद्वाणियां हैं जो असंगत वरन विषम प्रतीत होती है, तो वे पूरी कैसे होंगी? यद्यपि बैतलहम को प्रभु यीशु का जन्म स्थान बताया गया था, बैतलहम के उत्तर में रामाह नामक स्थान के लिए भी भविष्यद्वाणी है कि वहां रोना और पीटना होगा, वह मिस्र से बुलाया जाएगा परंतु नासरी कहलाएगा। ये सब भविष्यद्वाणियां संयोजित कैसे होंगी? मती अपने वृतांत में सुनाता है और परिस्थितियों पर भी ध्यान न देकर ये सब भविष्यद्वाणियां प्राकृतिक रूप से वरन मैं कहूंगा कि अलौकिक रूप से पूरी होती हैं। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ था और है, हम सब का जीवन भी उसी के हाथ में है, हमारे जीवन की तकदीर सब उसके हाथ में है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को इसलिए रखा है ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी करवाई क्योंकि वह इस पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए भेजने वाला था, और यही कारण था कि प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर था, जो पिता के साथ में था, जो वचन था, देह धारण करके अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आया एक मनुष्य के रूप में, और उसने परमेश्वर के गुण को हमें प्रकट किया, क्योंकि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने परमेश्वर के गुण को हमें दिखाया है अपने व्यवहार से, अपनी शिक्षा से, और इसी से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, सिर्फ यीशु ही हमें उद्धार दे सकता है, क्योंकि उसने यह भी कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे मित्रों, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में है वह सत्य है। इसलिए आज जब आप प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं तो निश्चय जानिए कि वह आपके लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि आप बचाए जाएं। और इस बात को मीका नबी ने 700 साल पहले उसके बारे में कहा था। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही ज्ञान की बातों को पाया है और आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और सहायता करे कि आप उसके वचन में बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सीमाएं।